Prabhu, you have to learn how to keep the beat properly. You know, you missed. I had to stop the recording. I had to erase the recording. I had to start it over again. That's why I'm chanting Jaya Jaya Shri Chaitanya again. Because you people can't get it together to keep the beat. You want to chant. Jaya Jaya Shri Chaitanya. That's not how I was chanting. Jeev Jago. That's not how I was chanting. Who's it? Translate. Of course, these guys, they know how to speak English. I mean, the ones here that can't keep the beat, they know how to speak English. He wasn't here, so he's not at fault. No, I'm serious. Learn how to keep the beat. You couldn't hear, obviously. I'm a musician, you aren't. That's the problem. You know, I was going like this with my hand even, and you're still going, and it, a completely different speed. Come on, give me a break. You obviously couldn't hear that you were going a different speed than me. You could hear? You weren't here, you were in outer space. You could hear that I was going a different speed than everybody else? No, you're also in outer space. The point is that we cannot become big Krishna conscious by flying in outer space. Translate.
तो महाराज कह रहे हैं कि सब भक्तों से कह रहे हैं कि जो ताल सही नहीं सब बजा रहे थे उसमें कुछ गड़बड़ हो रही थी.
This is yoga.
महाराज तेज कर रहे थे, भक्त लोग आस्ते कर रहे थे.
Yoga means attentiveness.
तो इसलिए महाराज कह रहे थे, इसलिए ताल साथ में रखना जरूरी है.
Everybody got out of the wrong side of bed today.
तो इसलिए महाराज कह रहे थे कि महाराज के साथ ताल बनाना जरूरी है और मतलब ध्यान रखना जरूरी है. योग का मतलब भी है कि एकाग्र ध्यान रखना, मन को एकाग्र रखना.
We're reading today from Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 9, text starting with text 222.
तो मध्य लीला अध्याय 9 में से 222 प्यार संख्या में से हम पाठ कर रहे हैं.
This is the chapter entitled Lord Chaitanya's travels to holy places.
तो इसका शीर्षक है इस अध्याय का श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्राएं.
What's on the board? 222 or 223?
223.
223?
Yes.
So I'll chant text 222. Chamtapure ase deki Sri Rama Lakshmana Sri Vaikunthe ase Kaila Vishnu Darshanam. Because he has just gone to a temple of Lord Vishnu.
तो यहाँ पर दर्शन शब्द लिखा है क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु विष्णु जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए.
Translation of 222. Later, the Lord went to Champatapura, where he saw the deities of Lord Ramachandra and Lakshman.
बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु चामतापुर गए, जहां उन्होंने श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण के अर्च विग्रहों के दर्शन किए.
He then went to Sri Vaikunth and saw the temple of Lord Vishnu there.
इसके बाद श्री वैकुंठ गए और वहां भगवान विष्णु का मंदिर देखा.
So Prabhupada's purport.
श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य.
Champatapura, sometimes called Chinnagar, Chinnagur, is located in the state of Kerala. And a temple of Lord Ramachandra and Lakshman is located there.
कभी कभी चामतापुर को चेंगानूर भी कहा जाता है. ये केरल रियासत में स्थित है. यहाँ भगवान रामचंद्र तथा लक्ष्मण का एक मंदिर है.
श्री वैकुंठ, about 4 miles north of Alvar, Tirunagari, and the 16 miles southwest of Tirunelveli, is situated on the bank of the Tamraparni River.
Shivakunt ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित है और आलवर तिरुनगराई से लगभग 4 मील उत्तर तथा तिरुनेलवेली से 16 मील दक्षिण पूर्व है।
So, Mahaprabhu's tour of South India was very comprehensive, and so he was playing the role at this time of Acharya.
तो श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा बहुत ही विस्तार रूप से लिखी गई है और यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु की एक आचार्य की भूमिका कर रहे हैं।
He was going to all these temples honoring the Supreme Personality of Godhead.
और वो हर मंदिर जा रहे थे जहाँ वो भगवान श्री कृष्ण को दर्शन कर रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे।
He also went to temples of Lord Vishnu, of Lord Shiva.
और विष्णु और शिव दोनों के मंदिरों में श्री चैतन्य महाप्रभु जाते थे।
We mentioned earlier that sometimes when he went to temples of Lord Shiva, he converted the Shaivites to Vaishnavism.
और मैंने पहले बताया था कि जब वो शिव जी के मंदिर जाते थे तो जो इतने शिवाइट होते थे उनको वैष्णव बना दिया करते थे।
We have discussed previously that although followers of Lord Shiva are supposed to understand the relationship between Lord Shiva and Lord Vishnu,
हमने पहले चर्चा की है कि जो शिव जी के अनुयायी हैं उनको ये पता होना चाहिए कि शिव जी और विष्णु में क्या संबंध है।
Generally, their priests do not know the relationship properly.
अधिकांशतः जो पुजारी हैं शिव मंदिरों में उनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है।
That's especially true today. It's especially true today that the priests cannot explain.
और especially आजकल के समाज में ये सत्य है।
So only a pure Vaishnava can properly explain the relationship between Lord Vishnu and Lord Shiva.
तो एक शुद्ध वैष्णवी वास्तव रूप में शिवजी और विष्णु जी के बीच में जो संबंध है उसको सही तरीके से समझा सकते हैं।
So converting the Shaivites to Vaishnavas means that he gave them the proper understanding of the relationship of Lord Shiva and Lord Vishnu.
तो शिवाइट को वैष्णव बनाने का मतलब यह है कि उन्होंने उनको सही तरीके से इस तथ्य के बारे में बताया कि शिवजी और विष्णु बीच में क्या संबंध है, शिवजी की क्या स्थिति है, विष्णु की क्या स्थिति है।
In the process of Harinam Sankirtan.
और उनको हरिनाम संकीर्तन के बीच में उनको सम्मिलित किया, उनको हरिनाम संकीर्तन में उनको लगाया।
So it's hard to imagine how much Vaishnavas in general has been eroded in these areas where Mahaprabhu was touring.
तो अभी सोचना बहुत मुश्किल है कि कैसे जो वैष्णव धर्म जो है वो काफी रूप से लुप्त हो गया इस सब स्थानों में जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने परिक्रमा किया था, दर्शन के लिए यात्रा की थी।
Because now we see that Christianity is spreading like wildfire in all these areas that Mahaprabhu went to.
और हम देख सकते हैं जो ईसाई धर्म है वो दावनी के समान जो है इन सब जगहों पर फैल चुका है जिस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु तीर्थ यात्रा में गए थे।
It underscores the urgency of our Krishna consciousness movement.
तो इसलिए वो जो हमारे कृष्णा भावना अमृत आंदोलन के प्रचार का जो urgency है उसको हम
समझें। Where Vaishnavism was almost lost.
अगर श्रील प्रभुपाद जी नहीं होते तो भारत में भी जो वैष्णव धर्म है वो अधिकांश लुप्त हो जाता।
I try to understand that if it weren't for श्रील प्रभुपाद, it would be lost again.
तो श्रील प्रभुपाद जी ना होते तो ये दोबारा जो खो जाता।
Because at the time, we could say as recently as the time of श्रील Bhaktivinoda Thakur, there weren't any pure Vaishnavas.
तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के समय तक शुद्ध दर्शन ढूंढना बहुत मुश्किल था।
If you read in the biography of Bhaktivinoda Thakur called the Seventh Goswami.
तो अगर हम बायोग्राफी पढ़े श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी की जिनका नाम सप्तम गोस्वामी है,
you'll see that his time the Vaishnavas followers of Mahaprabhu had all become degraded, Sahajas and other deviant sects. And so the opinion of Vaishnavas was very, very low because there were no pure devotees.
तो हम उनके बायोग्राफी में पढ़ते हैं कि कैसे जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे वो काफी हद तक सहजिया बन चुके थे, इसलिए लोगों की भावना वैष्णव धर्म के प्रति बहुत निकृष्ट हो गई थी।
So after Bhaktivinoda Thakur left Jagannath Puri and went to Navadvip Dham, at that time he had his home at Gojuma Dham.
तो जब भक्तिविनोद ठाकुर ने जगन्नाथपुरी धाम को छोड़कर वो नवद्वीप धाम में गए,
जय जय श्री श्री परिक्रमा कृष्ण बलराम, एंड एट हिज होम ही हैड दिस लिटिल क्लब ऑफ प्योर वैष्णव्स, जगन्नाथ दास बाबूजी एंड गोरखेश्वर दास बाबूजी, दे यूज्ड टू हैव देयर ओन प्राइवेट संगा देयर।
तो नवद्वीप धाम में उनका घर था और वहां पर उनको उनका एक छोटा सा भक्तों का एक समूह था जिसमें श्री जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज थे, श्री गौर किशोर दास बाबूजी महाराज थे, और छोटे समूह में वो संग करते थे। और व्यवहारिक रूप से देखें कि उस पूरे जगह उस जगह में वो ही कुछ गिने चुने शुद्ध वैष्णव बच गए थे।
सो देन वी सी हाउ श्री भक्तिविनोद ठाकुर सेव वैष्णविज्म।
तो हमने देखा कैसे श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने शुरुआत की वैष्णव धर्म को बचाने की।
Similarly, Srila Prabhupada is present tense saving Vaishnavism from total obliteration.
और श्रीला प्रभुपाद जी आज भी वैष्णव धर्म की रक्षा कर रहे हैं लुप्त होने से, पूर्ण रूप से लुप्त होने से।
The Sri Vaishnavas were basically the foremost religion in South Indian areas that Mahaprabhu was visiting.
और जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की तीर्थ यात्राओं में थे तो श्री वैष्णव जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलित थे।
But unfortunately, when you tour South India now, you see that there are hundreds more Christian churches than so-called Hindu temples.
लेकिन अगर आप अभी उसी जगहों पर यात्रा करेंगे तो आप देखेंगे आपको कई जो चर्च हैं
वो
आपको ज्यादा मिलेंगे मंदिरों के की जगह।
मलया पर्वते कैला अगस्त्य वंदना,
मलया पर्वते कैला अगस्त्य वंदना,
कन्याकुमारे तहन कैला दर्शना,
कन्याकुमारे तह कैले दर्शना,
मलया पर्वते कैला अगस्त्य वंदना,
मलया पर्वते कैला अगस्त्य वंदना,
कन्याकुमारी तहन कैल दर्शना,
कन्याकुमारी तह कैल दर्शना,
मलया पर्वत कैल अगस्त्य वंदना,
मलया पर्वत कैल अगस्त्य वंदना,
कन्याकुमारी तहन कैल दर्शना,
कन्याकुमारी तह कैल दर्शना,
मलया पर्वत कैल अगस्त्य वंदना,
मलया पर्वत कैल अगस्त्य वंदना,
कन्याकुमारी तह कैल दर्शना,
कन्याकुमारी तह कैल दर्शना।
नेक्स्ट लाउडर।
मलया पर्वत कैल अगस्त्य वंदना,
कन्याकुमारी तह कैल दर्शना,
कन्याकुमारी तह कैल दर्शना,
मलया पर्वत कैल अगस्त्य वंदना,
कन्याकुमारी तह कैल दर्शना,
मलया पर्वत कैल अगस्त्य वंदना,
कन्याकुमारी तह कैल
दर्शना, मलया पर्वत कैल अगस्त्य वंदना,
कन्याकुमारी तह कैल दर्शना, मलया पर्वत कैल अगस्त्य वंदना,
कन्याकुमारी तह कैल दर्शना। वैष्णवेश वैष्णव इज
मल्या पर्वत केला अगस्त वंदा
कन्याकुमारी तह केल दर्शन
मल्या पर्वत केल अगस्त वंदा माता जी से प्रार्थना है जोर से उच्चारण करें और जोर से गाएं कन्याकुमारी ताह केल दर्शन
मल्या पर्वत केल अगस्त्य वंदन
कन्याकुमारी ताह केल दर्शन मल्या पर्वत केल अगस्त्य वंदन
Translation.
Anuvad.
Sri Chaitanya Mahaprabhu then went to Malaya Parvata and offered prayers to Agastya Muni.
इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मल्ले पर्वत गए और उन्होंने अगस्त मुनि की वंदना की.
He then visited Kanyakumari or Cape Comorin.
तत्पश्चात उन्होंने कन्याकुमारी केप कैमरिन नामक स्थान की मुलाकात ली.
प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय. The range of mountains in South India beginning at Kerala and extending to Cape Comorin is called Malaya Parvata.
दक्षिण भारत में वह पर्वतों की माला जो केरल से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है मल्या पर्वत कहलाती है.
Concerning Agastya, there are four opinions. Number one, there is a temple of Agastya Muni in the village of Agastya Pamali.
अगस्त्य के संबंध में चार प्रकार के मत हैं. पहला, तंजोर जिले में अगस्त्य पल्ली नामक गांव में अगस्त्य मुनि का मंदिर है.
In the district of Tanjore.
तंजोर जिले में.
Number two, there is a temple of Lord Skanda on a hill known as Shivagiri.
शिवगिरी नामक पर्वत पर भगवान स्कंद का मंदिर है.
And this temple is said to have been established by Agastya Muni.
जिसकी स्थापना अगस्त्य मुनि द्वारा की गई बताई जाती है.
Number three, some say that the hill named Cape Comorin, a hill near Cape Comorin, is known as Pothia.
कुछ लोग कहते हैं कि कन्याकुमारी के पास पठिया नामक पर्वत है.
That this hill served as Agastya Muni's residence.
जहां अगस्त्य मुनि रहते थे.
The fourth opinion, there is a place known as Agastya Malaya, which is a range of hills on both sides of the Tamarapani River.
अगस्त्य मल्ले नामक एक अन्य स्थान भी है जो ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों में फैली हुई एक पर्वतमाला है.
Cape Comorin itself is also known as Kanyakumari.
केप कैमरिन कन्याकुमारी भी कहलाता है.
So, Srila Prabhupada has explained everything in the purport. I'm simply going to go on to text 224.
श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में सब कुछ समझाया है तो इसलिए मैं अगले प्यार 224 में जाता हूँ.
अमृतया देखि श्री राम गुरहरि मल्लवरा देशैते अयलयत But the Tari, after visiting Kanyakumari, Sri Chaitanya Mahaprabhu came to Amritala, where he saw the deity of Sri Ramachandra.
कन्याकुमारी देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अमलीतल आए जहां उन्होंने श्री रामचंद्र के अर्च विग्रहों का दर्शन किया.
Thereafter he went to a place known as Manaradesha, where a community of Bhattatharis lived.
तत्पश्चात वे मल्लार देश गए जहां भट्टथारी जाति के लोग रहते थे.
So we see from this description of the tour of Chaitanya Mahaprabhu how prominent the places of pilgrimage of Sri Ramachandra and Lakshman, Hanuman and Sita Devi. There are so many places in South India.
तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा में हम देखते हैं कि कितने प्रमुख स्थल में हमें श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी के मंदिर दिखाई देते हैं या उनके स्थान प्राप्त होते हैं.
It seems that Lord Ram was especially fond of South India.
तो इससे ऐसा हमें लगता है कि श्री रामचंद्र को दक्षिण भारत पसंद था.
Lord Shrinagarayav also he prefers South India.
नरसिंह भगवान को भी दक्षिण भारत पसंद था.
There are hundreds of Nrisimha temples in South India, hundreds of them.
वहाँ पर भी कई सैकड़ों जो हैं नरसिंह भगवान के मंदिर हैं दक्षिण भारत में.
And out of all those Nrisimha temples, a large percentage are self-manifested.
और अधिकांश जितने भी नरसिंह भगवान के मंदिर हैं जो नरसिंह भगवान के विग्रह हैं वो स्वयं प्रकट होने वाले हैं.
He likes caves.
और उनको गुफाएं बड़ी पसंद हैं.
Now why would Lord Nrisimhadev like caves?
तो क्यों नरसिंह भगवान को गुफाएं पसंद होंगी? आप बताइए.
Why does Lord Nrisimhadev like caves? No clue. Okay, sir, why does Lord Nrisimhadev like caves?
Saying because lion likes caves.
Lion likes caves. Haribo. Very simple.
बहुत ही सरल उत्तर है कि क्योंकि जो सिंह है उसको गुफाएं अच्छी लगती हैं.
Almost all the self-manifested Nrisimha deities in South India are in caves.
तो अधिकांशतः जितने भी नरसिंह भवन के विग्रह हैं वो अधिकांशतः आपको गुफाएं में मिलती हैं दक्षिण
में. They might be in small caves. They might be small caves or they might be large caves.
कभी गुफाएं छोटी होंगी कभी बड़ी होंगी.
But caves they are.
But वो गुफाएं हैं सर.
Sometimes the deity of Nrisimha, even though he's self-manifested, he didn't feel like coming all the way out of the rock.
तो कभी कभी जो नरसिंह भगवान के विग्रह हैं वो छोटे आकार के होते हैं और हालांकि वो स्वयं प्रकाशित हुए हैं लेकिन कभी कभी वो पूर्ण रूप से पत्थर से बाहर निकलते हैं.
So sometimes
पत्थर का हिस्सा भी रहता है.
Sometimes part of his body is inside of the rock and only the rest is sticking out of the rock, but still he's self-manifested.
तो कभी कभी उनका आधा शरीर पत्थर के अंदर होगा आधा बाहर होगा लेकिन वो स्वयं वो विग्रह बने हैं किसी ने उनको बनाया नहीं.
I've told this story before.
मैंने कहानी पहले बताई हुई है.
I've told this story before that there's one very famous temple of Lord Shrinagarayav. I don't remember the name.
तो मैंने एक पहले कहानी बताई थी कि बहुत प्रसिद्ध नरसिंह भगवान का मंदिर है इसका नाम मुझे याद नहीं है.
It's up on top of a mountain.
अब वो एक पर्वत के ऊपर है.
That's another thing. Lord Shrinagarayav likes to appear on top of mountains.
और इससे भी बात चलता है नरसिंह भगवान को पर्वतों के शिलाओं के ऊपर प्रकट होना अच्छा लगता
है. He's a lion king.
तो वो lion एक सिंह राजा हैं.
So why not? He likes tops of mountains, you know.
तो उनको पर्वतों के ऊपर रहना प्रकट
है. Several of his temples, of several of these self-manifested deities, you have to go up more than 500 stairs, or maybe even as much as 1,000 stairs to reach the temple up high.
और अधिकांशतः जो है इन मंदिरों के दर्शन करने के लिए हमें काफी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है कभी कभी 500 सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ती हैं तब कि हम पर्वत में ऊपर जाकर इन मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं.
So there's this one temple up on top of a mountain where there's self-manifested Nrisimha.
और ऐसे ही एक मंदिर है जो कि पर्वत के बिल्कुल ऊंचे चोटी पे ऊपर है जहां पर नरसिंह भगवान स्वयं प्रकट है.
They say he is very fierce.
और वो कहते हैं कि वो उग्र रूप में है.
He's supposed to be Maha Ugra Nrisimha.
तो वो ऐसा माना जाता है कि वो महा उग्र रूप में है.
But you know, he's He doesn't look ogre to me, but that's just a personal thing.
तो निजी रूप से मैंने उनको इस उग्र रूप में मैं नहीं समझता हूँ कि इतने उग्र रूप में हैं, मुझे ऐसा आभास होता है.
He's a very special deity.
और बहुत ही विशेष विग्रह है.
He has a jaw that is about half a meter long.
और उनका जो मुंह का जबड़ा है वो आधा मीटर चौड़ा है.
And that jaw is open.
और वो खुला है.
So, like, I can't really imitate it, but you know, it's the top of his mouth is shorter than the bottom. So, the bottom of his jaw becomes a reservoir. It's half meter long reservoir. He does this on purpose.
तो उनका मुख कुछ ऐसा है कि जो मुंह का ऊपर वाला भाग है वो छोटा है लेकिन नीचे वाला भाग काफी बड़ा चौड़ा आधा मीटर जितना है जिसके कारण जो है वो एक रिजर्वर का काम करता है.
So he's a very hot deity. Hot deity.
और उनका तापमान शरीर का तापमान गर्म रहता है.
So if you're hot, you know, then you like to cool off with nice drinks.
और अगर आपके शरीर में कुछ गर्मी है तो आप शरीर को ठंडक दे सकते हैं कुछ ठंडी ड्रिंक से.
स्पेशल ड्रिंक दैट ही लाइक्स मेड आई डोंट नो व्हाट इट्स मेड आउट ऑफ इट्स ग्रीन कलर इट्स हर्ब्स एंड मे बी हैज शुगर केन आई डोंट नो व्हाट हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स इट्स स्वीट टेस्टिंग.
और उनको जो है वो एक खासकर एक हरी रंग की ड्रिंक है जो कि उनको शरीर को ठंडा करती है, वो उनको बहुत पसंद है. वो अलग अलग जड़ी बूटियों से बनी है, वो उनको पिलाई जाती
है. You buy this special drink from the pujaris. There's a stand there that sells this special drink by the leader.
और वहां पर पुजारी रहते हैं जिनसे आप ये ड्रिंक खरीद सकते हैं. उन लीटर पर लीटर आप जितना चाहें उनसे खरीद सकते हैं.
Then you take the jug of this amrita and you give it to the pujari and the pujari, you don't get to put it direct into Lord Shingadev's mouth. The pujari puts it into the Shingadev's mouth.
तो आप वो जल खरीद सकते हैं और फिर पुजारी को दे सकते हैं और पुजारी जो है वो नरसिंह मोहन के मुख में वो अमृत जैसा जल डालते हैं. आप खुद नहीं डाल सकते, पुजारी ही डाल सकता है.
Because he's ogre Nrsingha, he's hot. So when you're hot, you like a nice cool drink.
तो उग्र नरसिंह है, उनका शरीर का तापमान ज्यादा है और ऐसी स्थिति में आपको ठंडी करने वाली ड्रिंक अच्छी लगती.
So, hundreds of pilgrims go up there every day.
और हर रोज जो है कई सैकड़ों तीर्थयात्री वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं.
So, he drinks a lot of this beverage.
और उनको ये ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है और वो काफी इसको पीते हैं.
I can't imitate how his jaw sticks out. I can't imitate how it is, but I mean, the top of his mouth is like this, and the bottom of his jaw is like this. If you get an idea, you know. In other words, his bottom jaw is, you know, three times longer than the top jaw, and it's extended so it becomes a reservoir.
तो ऐसा मुझे इसका नकल करना तो मुश्किल है, लेकिन मैं एक अंदाजे से बता सकता हूँ कि उनको जो जो जबड़ा है मुख का जो ऊपर वाला भाग है और नीचे वाला भाग उसे तीन गुना बड़ा है जिसमें जो है हम उस जल को डाल सकते हैं.
Pour 100 or 200 liters per day into Lord Shingadev's mouth, directly into his mouth.
तो करीबन 200 लीटर वो जल हर रोज नरसिंह मोहन के मुख में वो पुजारी डालते हैं.
It never overflows.
और वो कभी भी पानी बाहर निकल के नहीं आता, वो सब वो ग्रहण कर लेते
हैं
और वो पी लेते हैं उसको.
Now an atheist might argue maybe there's a crack in the back of the murti and it's going down the crack, and maybe if we look around, you know, maybe you'll find a small creek somewhere where it's going through the crack and, you know, coming out in some small stream somewhere.
कोई नास्तिक व्यक्ति होगा तो वो ये बोलेगा कि वहां निश्चित रूप से कहीं कहीं छेद होगा, कहीं नाली बनी होगी जिससे वो सारा जल जो है नाली के थ्रू कहीं बाहर निकल जाता.
There is no such thing.
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है.
In other words, there's no even if you were to circumambulate all the way around this temple and go below it and so forth, you know, you won't find a trace of some opening in the rock where the liquid is coming out.
तो आप इस पूरी मंदिर की परिक्रमा भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, और आप देखेंगे ढूंढने पर भी आपको ऐसा कोई छेद या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जहां से ये जल जो है निकल जाता है और बह जाता है.
This means that he's drinking it.
इसका मतलब ये है कि नरसिंह भगवान के विग्रह उस जल को पीते हैं.
नरसिंह भगवान की जय. So one time a fool, I've told this story before, but how many of you heard this story before? Most of the Vaishnavas, they haven't heard this story. It's an amazing story. One time a fool thought, well, I want to see how deep is the throat of this deity.
तो मैंने कहानी पहले भी बताई है, अधिकांशता भक्तों ने शायद इस कहानी को नहीं सुना है, लेकिन बहुत दिलचस्प कहानी है कि एक बार एक मूर्ख व्यक्ति ये देखना चाहता था कि नरसिंह भवन का मुख कितना गहरा है.
So he thought he would measure it with his arm and just, you know, you want to know how deep some water is, you put your arm into it and, you know, you're trying to figure out, is it 1-2 meters deep, how deep is it?
और उसको लगा कि मैं हाथ डालकर ये देख लूंगा कि उनका अंदर मुंह कितना गहरा है, 1-2 meter कितना है, और इसने ऐसे कोशिश किया कि नरसिंह भगवान के मुख को हाथ डालने की कोशिश की.
Put his arm, he thrust his arm deep into the throat of Lord Shingadev. He must have done it so quickly that pujaris couldn't stop him.
और उसने क्या किया कि पूरा अपना हाथ बाजू जो है नरसिंह भगवान के मुख में डाल दिया, लेकिन उसने इतनी जल्दी किया कि पुजारियों को पता नहीं चला वो ऐसा कुछ कर रहा.
So when he withdrew his arm, it wasn't there.
और जब उसने लेकिन अपना हाथ बाहर निकाला तो देखा कि हाथ था ही नहीं.
Lord Shingadev did not appreciate having this fool thrust his arm into his throat.
क्योंकि नरसिंह भगवान को ये पसंद नहीं आया कि उनके मुख पर किसी ने अपना हाथ डाल दिया.
So Lord Shingadev, I mean, remember he's Ugar and a singer, so this belongs to the How Stupid Can You Get department.
तो वो उग्र नरसिंह भगवान थे. तो
I mean, we're supposed to be afraid of Ugar the singer, you know, something.
तो इससे ज्यादा कोई मूर्ख और नहीं बन सकता कि उग्र नरसिंह भगवान के मुख पर उसने अपना हाथ डाला.
So when he thought he was going to pull his arm out, it was gone. Lord Shingadev chopped it off.
और जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो देखा कि उसका हाथ कटा हुआ था. नरसिंह भगवान ने उसको
नरसिंह भगवान की जय. So one should not be a fool when dealing with the supreme personality of Godhead.
So हमें बहुत ध्यान पूर्वक जो परम पुरुषोत्तम भगवान है उनसे उनसे व्यवहार करना चाहिए.
So this is the glory of South India that there are so many self-manifested deities. Of course, down at the southern tip of India, there is a temple with a self-manifested deity of Garbhodakshaya Vishnu.
तो ये वास्तव में दक्षिण भारत की महिमा है कि वहां पर ऐसे आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे जिसमें विग्रह जो हैं वो स्वयं स्वयं प्रकाशित हैं, किसी ने उनको बनाया नहीं. और बिल्कुल दक्षिण भारत के कोने में आपको ऐसे ही एक शिरोदक्षा विष्णु के विग्रह भी मिलेंगे.
Many years ago, hundreds or possibly thousands of years ago, there was a pious king down there.
और हजारों साल पहले वहां पर एक पुण्यवादी राजा रहता था.
And he, the Lord was very pleased with him. He was a great devotee of Lord Vishnu.
और वो भगवान का भगवान विष्णु के बहुत अच्छे भक्त थे और भगवान उससे बहुत प्रसन्न थे.
And certainly Lord Vishnu was very pleased with him.
और निश्चित रूप से भगवान उस राजा से बहुत ही प्रसन्न थे.
So he self-manifested himself.
और फिर उसके कारण भगवान के सामने एक दिन
before the king.
राजा के सामने प्रकट हो गए.
Now I don't remember how many kilometers, but he was a giant deity.
और मुझे नहीं पता कि कितने किलोमीटर लंबा है, लेकिन बहुत ही लंबा और बड़े विग्रह में रूप में प्रकट हुए.
He was, when I say giant, I mean he was giant. He was not an ordinary size deity.
और जब मैं कह रहा हूँ कि वो अर्थ विग्रह बहुत ही विशाल थे, तो वास्तव में बहुत विशाल थे.
I don't remember the exact distance.
मुझे उनका पूरा आकार का वो उसका आकार का
but his self-manifested body of this deity was somewhere around, it could have been as long as 30 kilometers. You heard me.
तो उस विग्रहों का जो आकार था वो कम से कम 30 किलोमीटर लंबा होगा।
Anybody ever been there to this temple?
कभी आप लोगों ने किसी ने ये मंदिर में?
So how many kilometers was it? Well, how many the self manifested? How many kilometers do you remember?
36
kilometers. Haribol. 36 kilometers long.
तो कदम बिहारी प्रभु वहां पर गए हैं और कह रहे हैं कि विग्रह पहले 36 किलोमीटर लंबे थे हरिबो।
But unfortunately for us, it's our misfortune actually.
लेकिन हमारा दुर्भाग्य है।
The king had a, you could call it a friendly relationship with Lord Vishnu. I'm sure he was in Aishvaya Bhava or formality, but still he was able to converse with the Lord.
और उस राजा का बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध था भगवान के साथ, वो भगवान से बात भी कर सकते थे।
So he requested, my dear Lord, it's very wonderful that you have manifested before me.
उन्होंने भगवान को कहा कि हे मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं।
But at 36 kilometers, you're so huge, I can't serve you properly.
लेकिन आपका आकार इतना बड़ा है 36 किलोमीटर की, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता।
So the merciful Lord, just to please his devotee, made himself smaller.
तो नरसिंह भगवान अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने उस विग्रहों का आकार छोटा कर दिया।
So the deity today is about the length of the distance between these two columns here.
तो अब जो विग्रहों का आकार है, जितना दूरी इन दो खंभों के बीच में है, उतना ही उस विग्रहों का आकार है।
That's about 10 or 12 meters.
जो कि करीबन 10 से 12 मीटर होगा।
Sound right? 10 or 12 meters.
10 से 12 मीटर के बीच में इसकी।
He shrank down to that size.
और वो 36 किलोमीटर से छोटे से आकार।
He's still a large deity because they have made the altar in three sections. So in order to see the deity, you have to go between three altars.
तो फिर भी वो विग्रह काफी बड़े हैं और उन्होंने विग्रहों के बीच में तीन वेदी बनाए हैं जिसमें वो पूरे विग्रहों की अलग सेवा होती।
And actually, Westerners are not allowed in this temple without the permission of the king.
तो राजा की अनुमति के बिना वहाँ पर जो पाश्चात्य जगत के कोई भी भक्त हैं, तो वो दर्शन करने के लिए उनको अनुमति नहीं है।
When I went there, I had to have a letter. Somebody had to go and get a letter signed by the king so that I could enter the temple.
तो जब मैं गया था, तो किसी को वहाँ पर राजा से अनुमति लानी पड़ी ताकि मैं दर्शन करने के लिए मंदिर में जा सकूँ।
I think this is one of the temples that has the musical columns. Musical columns. Hello? Musical columns.
तो ये मंदिर है जिसमें संगीतमय स्तंभ है।
Column. Pillars.
तो संगीतमय स्तंभ उस मंदिर में हमें मिलते हैं।
So musical columns means that if you have a stick or something and you strike on the columns, they all have a different tone. So you could do a whole orchestra. If you have more than one person, you could play a whole melody on these columns.
तो ये स्तंभ उसमें ऐसे हैं कि अगर आप किसी लकड़ी से उसको बजाएंगे, तो खंबे के ऊपर अगर आप बजाएंगे, तो उस खंबे में से आवाज निकलेगी।
More than one temple like that in South India.
तो ऐसे एक से कई ज़्यादा मंदिर ऐसे हैं जिसमें हमें ऐसे स्तंभ मिलते हैं।
There was a art and tradition in the days of yore.
और ऐसा एक संस्कृति थी पुरातन काल में।
There were several temples were constructed like that with these musical columns.
और कई ऐसे मंदिर जो हैं ऐसे स्तंभ के साथ बनाए गए हैं।
So actually, it's a shame for us that the king asked the deity to shrink down.
और हमारे लिए शर्मनाक बात है एक तरीके से कि राजा ने भगवान के आकार को छोटा करने के लिए प्रार्थना किया।
Because in a modern world of atheism, the atheists and the scientists, they would not be able to explain this deity if there were still a 36 kilometer duty there. The scientists would not be able to explain it.
तो वास्तविक रूप में अगर ऐसा हो जाता कि वो विग्रहों का आकार छोटा नहीं होता, तो जितने भी नास्तिक हैं, ऐसे वैज्ञानिक हैं, वो इस इतने बड़े 36 किलोमीटर के विग्रहों कैसे बने उसको समझा नहीं पाते।
All the geologists, they would probably get the best geologists from around, you know, they study rocks, geologists, you know.
तो ऐसे एक वैज्ञानिक जो कि पत्थरों कि जो है वो विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं।
Land formations, they study land formations.
और जमीन के में कैसे कैसे विकार आते हैं उसको पढ़ने उसको
समझने की कोशिश करते हैं। Brought all the best geologists in the world would come to see that deity that was 36 kilometers long.
तो उनको जियोलॉजिस्ट कहते हैं, तो वो अगर ऐसे विग्रह होते तो पूरे विश्व भर से ऐसे वैज्ञानिक आते उन विग्रहों को समझने।
All they could do is scratch their heads, you know.
ज्यादा क्या करते हैं, अपने सर हिलाते लेकिन उनको जो है
it would be obvious that it couldn't have been man made. There's just no way that it could have been man made because they wouldn't even have a way of moving that much stone in those days. I mean, even now, with modern technology and huge cranes and all that, 36 kilometers of stone without separate pieces, you know, not possible. Even if with the biggest cranes in the world, it would not be possible to do it.
तो वो अपना सर खुजाते रहते हैं लेकिन ये समझ नहीं पाते कि 36 किलोमीटर का एक विग्रह कैसे बनाया गया। ये तो निश्चित रूप से था कि कोई इंसान इसको नहीं बना सकता। आज के आधुनिक समाज में भी अपनी सब मशीनरी और सब अपने उनके इक्विपमेंट्स के साथ भी वो इस चीज को नहीं बना सकते, क्रेन के साथ भी।
तो
पहले जमाने में हजारों साल पहले कैसे बन जाता।
Anybody have any questions?
किसी का कोई प्रश्न है?
जगगुरु श्री बाबा की जय। ग्रंथ श्री चैतन्य चरितमृत की जय। इतना गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।